ओम शांति। आप सभी का आज के इस सेशन में बहुत बहुत स्वागत है। कर्मातीत कैसे बने, इस विषय पर हमारा चिंतन चल रहा है। आज चौथा सेशन है हमारा इस पर। जो कुछ भी चिंतन किया, थोड़ा सा उसको रिवाइज करके आगे की ओर हम बढ़ते चलेंगे। सबसे पहले बिल्कुल एकांतवासी होकर बैठ जाओ। ये विषय केवल सुनने का नहीं है, ये विषय जिसे सुनने आप बैठे हैं, ये अनुभव करने का विषय है। इसलिए पहले 2-3 मिनट बिल्कुल शांत होकर जैसे सब कुछ छोड़कर बैठे हैं, पूरी तरह से इस विषय के लिए बैठे हैं, मस्तक में आत्मा बनकर बैठ जाओ। चमकती हुई आत्मा जो अब अपने फाइनल पुरुषार्थ के लिए तैयारी करने के लिए बैठी है, ये विषय उनके लिए है जिनको ज्ञान अच्छी तरह से स्पष्ट हो गया है कि अब मुझ आत्मा का जाने का समय हो गया है। ये विषय उनके लिए है जिन्हें भगवान की बार बार आवाज आती है, बस अब घर जाना है। जो इतने धैर्य के साथ आत्मा को मुक्त करने का पुरुषार्थ करना चाहें, केवल वही इस विषय में कदम बढ़ाएं। हमें इस ब्रह्मांड का सबसे बड़ा ज्ञान प्राप्त हो चुका है, स्वयं भगवान ने आकर हमारा तीसरा नेत्र खोल दिया है। स्वयं का और समय का ज्ञान दे दिया है। अब संपूर्ण बनने की ओर कदम बढ़ाना है। ये ध्यान रहे, हम पहले ही बहुत लेट हो चुके हैं, अब और लेट नहीं कर सकते हैं। जिनके अंतर मन से ये पुकार आ रही हो, ये वैराग्य पैदा हो रहा हो, कि बस अब तो घर वापिस चला जाए, अब इस अंतिम देह का त्याग किया जाए, अब सारे कर्म बंधनों को तीव्र गति से काटा जाए, अब आत्मा को मुक्त किया जाए, जिन्हें ये अंदर से बात छू रही हो, जो अब इस पुरानी दुनिया को छोड़कर वापिस परम धाम जाने के लिए तैयार हों, वे चिंतन करें, बिल्कुल स्थिर और एकाग्र होकर चिंतन करें, मैं आत्मा अकेली आई थी, मुझे अकेले जाना है, अब तक जो भी बातें सुनी हैं जो बातें बुद्धि ने स्वीकार की हैं अब उन बातों को दिल की ओर लेकर चलना है। ताकि हमारे दिल को विश्वास हो जाए कि मेरे मालिक आत्मा अब फाइनल तैयारी पर है, कर्मातीत बनने की, संपूर्ण फरिश्ता बनने की तीव्र लगन का एहसास अपने दिल में जागृत करें। बार बार मन को यकीन दिलाएं अब घर जाना है, ए मेरे मन चल अब तैयारी कर लौटने की, शांति। प्रिय भाइयों और बहनों, हम चिंतन कर रहे हैं संपूर्णता की ओर चलने का। ये सिर्फ कोई टॉपिक नहीं है, ये अध्यात्म का निचोड़ है। टॉपिक उसे बोला जाता है कि गुस्से से कैसे मुक्त हों, चिड़चिड़ेपन से कैसे मुक्त हों, इस पूरे सिलेबस का एक छोटा सा पार्ट होते हैं ये टॉपिक। परंतु संपूर्ण कैसे बने, ये है कंप्लीट चिंतन। दूसरे विषय सब इसके पार्ट हैं, और जो इस संपूर्णता के विषय पर कार्य करेंगे उनके अपने आप वो कार्य सहज रूप से पूरे हो जाएंगे, जिनके साथ वर्षों से हम युद्ध कर रहे हैं। परंतु उसके लिए संपूर्णता क्या होती है, बाबा ने कर्मातीत अवस्था किसे बताया है, उसकी निशानियां क्या क्या हैं, इन सब बातों पर हमें, जैसा कल बताया कि ब्रह्मा बाबा की जीवनी भी अध्ययन करनी पड़ेगी, एकांतवासी होकर चिंतन भी करना पड़ेगा, अभ्यास करना होगा, कर्म बंधनों से छूटने की एक लगन लगानी होगी, उस लगन की अग्नि में आत्मा की सारी जंग नष्ट करनी पड़ेगी। तो इसलिए बार बार ये पूछना है अपने आप से, क्या मैं सही में अब संपूर्ण स्टेज की ओर बढ़ना चाहती हूं। अपने आप से बार बार पूछना है, क्योंकि मीठे भाई बहनों, हे आत्माओं, आप जब भी इस संसार में पाठ बजाने निकलेंगे, ये संसार आपको वास्तविकता का पाठ भुला देगा, ये आपको जीने की प्रेरणा देगा, ये आपको एहसास कराएगा कि अभी इतना जल्दी नहीं, अभी तो समय है। एक युद्ध सी हो जाती है योगियों के मन में। एक तरफ कहते हैं कि समय बहुत ही कम है, आपसे भी पूछा जाए तो यही कहेंगे कि समय बहुत ही कम है। फिर अगर पूछा जाए कि क्या पुरुषार्थ अति तीव्र समय की गति से चल रहा है, तो कहेंगे नहीं। मेजॉरिटी कहते हैं वक्त तेज चल रहा है, तो इसलिए इस दुनिया के सूक्ष्म प्रभाव से हे फरिश्ता बनने की लगन वाली आत्माओं, इस दुनिया के सूक्ष्म प्रभाव से बचना है। जो ये दुनिया प्लानिंग कर रही, तुम्हारी प्लानिंग वो नहीं हो सकती। और अगर तुम्हारी प्लानिंग दुनिया वाली है तो फिर तुम मंजिल की ओर नहीं बढ़ सकते। बिल्कुल स्पष्ट उदाहरण दे देते हैं आपको। ब्रह्मा बाबा के जीवन की प्लानिंग आज से 84-85 वर्ष पहले बिल्कुल वो नहीं थी जो दुनिया वालों की थी। उनको नारायण बनने की लगन लग गई थी, फरिश्ता बनने की लगन। जैसे जैसे ज्ञान स्पष्ट होता गया, वैसे वैसे फरिश्ता बनने की लगन लगी, और उस लगन में बाबा लीन होते गए, स्वाहा होते गए। ज्ञान में पुराना होना, जितने हम ज्ञान में पुराने हो रहे उतना हमारे अंदर वैराग्य ज्यादा होना चाहिए। योगी का चिन्ह है वैराग्य, उतना ही हमें एक रस होते जाना चाहिए। जितना आत्मा संपूर्णता की ओर बढ़ती है, अपने आप उसका एकांतवास बढ़ता चला जाता है। बाबा उदाहरण देते हैं, जिस प्रकार से कोई भी चीज जब तैयार हो जाती है, किचन में जो बनाते हैं, हलवा है जैसे, जब हलवा तैयार हो जाता है तो उसकी संपूर्णता की निशानी है वो किनारे छोड़ देता है। आत्मा भी अगर संपूर्ण हो रही है, अगर कर्मातीत अवस्था की ओर बढ़ रही है, तो वो इस दुनिया के सारे किनारे छोड़ती चलेगी। कल हमने कुछ पॉइंट्स आपको बताए थे, दुनियादारी का किनारा, दुनिया वालों से लगाव, दुनिया वालों से नफरत। कर्मातीत बनने वाली आत्मा दोनों से उपराम हो जाती है, न लगाव रखती है न नफरत रखती है। दुनिया के समाचारों में कि दुनिया में क्या चल रहा है, उससे भी उपराम होने लगती है वो। तीसरा, देह और देह के संबंध, ये बहुत बड़ा बंधन होता है। उन संबंधों के बीच में रहते हुए भी, जैसे कल बताया मक्खन में बाल की तरह, बिल्कुल भी चिपके हुए नहीं किसी संबंध में, कर्मातीत की ओर बढ़ने वाली आत्मा की निशानी है। अब इसको कैसे किया जाए? जिन्होंने ये लक्ष्य रख लिया है कि अब कर्मातीत बनना ही है, बाप समान बनना ही है, जिन्होंने ये दृढ़ निश्चय कर लिया है, दृढ़ निश्चय, देखिए सुनने में अच्छा लगता है ये, लेकिन अपने दिल से पूछ के देखिए कि क्या अब मैं आत्मा, बस ये सोचो मरने की तैयारी है ये, देह छोड़ना इसकी अंतिम सीढ़ी है। आत्मा देह में इसीलिए बैठी है क्योंकि अभी संपूर्ण पावन नहीं बनी है। जैसे ही वो संपूर्ण पावन बनेगी, इस पुरानी देह में टिक नहीं पाएगी। संपूर्ण बनना अर्थात हड्डी मांस की देह छोड़ना और सूक्ष्म फरिश्ता की देह लेकर आगे की यात्रा करना। सीधे शब्दों में दुनिया के हिसाब से ये मरने की ही तैयारी है, और वो भी बाबा ने बहुत समय पहले कह दिया कि बच्चे आ जाओ। बहुत समय पहले बाबा हमें बुला रहे हैं कि बच्चे आ जाओ। एक बाबा के महावाक्य आपको सुनाना चाहेंगे कि बाबा ने क्या कहा है, बाबा हमसे क्या चाहते हैं। थोड़ा वो महावाक्य बाबा के हम सुनेंगे।
Yeah.
जिन्हें भगवान की वाणी दिल में लगती है वो उसके महावाक्यों को जरा भी हल्केपन में नहीं लेते हैं, क्योंकि जो संगम पर चलाते हैं, बाबा ने कहा, वो अंतिम घड़ियों में चिल्लाते हैं, मीठे बाबा कितने प्यार से 84 वर्षों से कितने धैर्य से, जरा देखो सुनकर, कितने प्यार से कितने धैर्य से 84 वर्षों से हमें पढ़ा रहे हैं, अब तो कम से कम उसकी बातों को दिल के अंदर लेकर के जाना है, क्योंकि दिल के अंदर से ही जब संकल्प उठेगा तभी संपूर्ण परिवर्तन होगा। और जिन संस्कारों के साथ आप वर्षों से युद्ध कर रहे हो, वो संस्कार भगवान आपके एक दिन में भी ठीक करवा सकते हैं। केवल ये विधि हमको जाननी है। देखिए, बड़ी सरल सी बात है, जिसने ठान लिया कि अब घर जाना, अब तो मेरे को ये संगम युग पर जो ज्ञान मिला है ये संपूर्णता का ज्ञान है, अब वापस घर जाना है। मैं आत्मा जो 63 जन्मों से फंस गई थी विकारों में, अब मुझे अपने सारे विकर्मों को भी धोना है। मेन काम संगम का यही है, सारे विकर्मों को भी धोना है और पुण्य का खाता भी जमा करना है। जिनको ये क्लियर हो गया और अच्छी तरह से क्लियर हो गया, देखिए उनका क्रोध कैसे छूट जाएगा, क्योंकि उनको ये स्पष्ट हो जाता है कि अगर मैं आत्मा एक संकल्प भी किसी दूसरी आत्मा के प्रति नेगेटिव उठाती हूं तो उसका भी हिसाब किताब बनता है। एक संकल्प भी अगर किसी के लिए नेगेटिव उठाती हो उसका भी हिसाब बनता है, या संकल्पों में भी कोई आत्मा मुझे खींचती है उसका भी हिसाब बनता है। उसे क्लियर हो जाता है, जिसका ज्ञान संपूर्ण क्लियर हो गया है, उसे ये क्लियर हो जाता है कि एक एक संकल्प करके ही द्वापर के बाद आत्मा बंधी थी और अब उन सभी बंधनों को काटना है और नए बंधन नहीं बनाने हैं। क्रोध करने से, चाहे परिस्थिति कुछ भी हो, चाहे वो परिवार की है, चाहे वो बिजनेस की है, चाहे वो कारणे अकारणे कुछ भी है, क्रोध करने से सोल टू सोल हिसाब किताब क्लियर होता है या बढ़ता है? उत्तर देंगे, क्रोध करने से सोल टू सोल हिसाब किताब बढ़ता है या क्लियर होता है? Anybody? Answer? देखिए, जब ये आराम से चिंतन किया जाता है ना तो आंसर बिल्कुल क्लियर आता है कि हिसाब किताब बढ़ता है। थोड़ा भी किसी पर आक्रोश किया तो भी हिसाब किताब बढ़ता है, जोश किया हिसाब किताब बढ़ता है। लेकिन जिसने ये दृढ़ संकल्प ले लिया है कि मुझे अब हिसाब किताब बढ़ाने नहीं है, मुझे तो अब हिसाब किताब चुकाने हैं। उस आत्मा को सहज हो जाता है किसी को क्षमा करना, क्योंकि जिस बात से मुझे सजा होने वाली है, देखो दुनिया में भी हम जीते हैं, जिन जिन बातों से हमें सजा होने वाली है हम सेंसिबली उन बातों से कितना अवॉइड कर लेते हैं। जो सेंसिबल होते हैं, समझदार होते हैं, वो कभी रेड लाइट को क्रॉस नहीं करेंगे, क्योंकि पता है कि फाइन होगा। वो और कोई दूसरे जो भी कानून बने हैं उनको तोड़ेंगे नहीं, क्योंकि पता है कि सजा होगी। तो जब हमें ये पता लग गया कर्म फिलॉसफी के हिसाब से कि सजा होती है, अगर एक एक संकल्प भी किसी के लिए चलाते हैं तो वो सजा बन जाता है, पहले मन बुद्धि को भटकाता है और आत्मा के फरिश्ता स्थिति को दूर कर देता है। तो वो आत्मा दृढ़ संकल्प कर लेती है कि कुछ भी हो जाए क्रोध रास्ता नहीं है। दूसरा फैक्टर, कैसे उसका क्रोध या और चीजें छूट जाती हैं, ईर्ष्या द्वेष चुगली व्यर्थ छूट जाता है उसका, कैसे? क्योंकि उसे भगवान से प्यार हो गया है, और जिसे भगवान से प्यार हो गया, जिसने अपने दिल में बाबा को बिठा लिया, आप सोच कर देखो, जिसके दिल में बाबा है क्या उसके दिल में कोई भी विकार, चाहे वो क्रोध है चाहे वो काम है, बसेगा? कोई विकार उसके मन में नहीं रह सकता, क्योंकि उसने इतना प्यार से बाबा को अपने दिल में बिठा लिया है। बार बार बाबा को, बाबा के पास बैठकर, बाबा से बातें करके, अमृत वेला उसके साथ रूह रिहान करके, उसने भगवान के साथ इतना सुंदर संबंध बना लिया है कि वो जब प्यार से बाबा बोलती है आत्मा, मन के अंदर क्रोध ईर्ष्या द्वेष भाव रह ही नहीं सकते। और इससे क्या होता है, उसके आत्माओं से कर्म बंधन नहीं बनते हैं। ये बहुत जरूरी बात है कि बाबा के प्यार के द्वारा और संपूर्णता की लगन के द्वारा कैसे हम अपने विकारों से मुक्ति पाते हैं। ऋण चुकाने का टाइम है ये, ऋण बढ़ाने का टाइम नहीं है। लेकिन इसके लिए सबसे जरूरी एकांतवासी बनना है, अपने हमें बाबा के पास एकांत में बैठने का समय ज्यादा से ज्यादा निकालना है। और है भी नेचुरल, जब हमारा सब आत्माओं से हिसाब चुकतू हो रहा है, जैसे ब्रह्मा बाबा को वैराग्य आया, अब हमें भी आत्माओं से वैराग्य होना चाहिए। मैं कोई नई बात नहीं बता रहा हूं, रोज मुरली में आता है, लेकिन हम उसे पढ़ते कैसे हैं वो देखिए। आज बाबा ने कहा है कि बच्चे तुम्हें बेहद का वैराग्य होना चाहिए, तुम्हें किसी भी आत्मा में लगाव नहीं होना चाहिए, तुम्हें सारे ममत्व मिटा देने हैं, तुम्हें बैग और बैगेज ट्रांसफर कर देना है, तुम्हें तन और मन धन सब इस ईश्वरीय यज्ञ में स्वाहा कर देना है। अब सुन लिया महावाक्य? और बहन जी ने पूछा, भाई बाबा ने क्या कहा? तो बहन जी मैं बताऊंगा, हाथ उठा के बोल दिया कि बाबा ने कहा है कि तुम्हें किसी में भी लगाव नहीं होना चाहिए, किसी से तुम्हारा मोह नहीं होना चाहिए, और तुम्हें बेहद का वैराग्य होना चाहिए, आज बाबा ने ये कहा है। और ऐसा बोलकर मन को फ्री कर लेते हैं कि जैसे मैंने आज का पॉइंट अच्छी तरह से सुना दिया, मुझे समझ में आ गया। पर मीठे भाई बहनों, कार्य तो इसके आगे ही बाकी है। कार्य इससे आगे ही बाकी है। ये तो सिर्फ सुना है, अभी तो भीतर चेक करना है। मुखड़ा देख ले प्राणी दर्पण में, कितना पुण्य कितना पाप तेरे जीवन में। अभी तो एकांत में बैठ करके ईश्वरीय महावाक्यों को चेक करना है पहले अपने अंदर, कि मेरे अंदर कितना किचरा है, लगाव है या नहीं है। लगाव की मोटी रस्सियां कटी हैं, सूक्ष्म है या नहीं है। और अगर है तो मैं उसे काटने का पुरुषार्थ कितना कर रही हूं। तो इसलिए एकांतवासी बनना, ये नोट कर सकते हैं आप जिन्हें संपूर्णता की ओर चलना है। मीठे भाई बहनों, एकांतवासी बनते चलो, अंतर्मुखी बनते चलो। देश दुनिया के समाचारों में भी इंटरेस्ट कम कर दीजिए, कोई आवश्यकता नहीं है ज्यादा इधर उधर की सुनने की। समय तो वेस्ट होता ही है उसमें। अभी तो हमारे खुद के सिलेबस को पूरा करने के लिए टाइम कम है। देश दुनिया, अड़ोसी पड़ोसी क्या कर रहे क्या नहीं कर रहे, इन चीजों से उपराम होती चलती है वो आत्मा जिसके अंदर ये बस गया कि मेरा बाबा बुला रहा है, अब मुझे वापिस घर जाना है। वैराग्य की एक लहर लग जाती है। अमृत वेला पर इस आत्मा का विशेष ध्यान होता है। भले ही कई कहते हैं कि हमारा लक्ष्य है संपूर्ण बनने का, लेकिन अमृत वेला पर अटेंशन अच्छा नहीं तो समझो उनका लक्ष्य नहीं। जो साजन का मिलने का समय है वही समय अगर मिस कर रहे हैं तो उनकी दौड़ संपूर्णता की ओर तीव्र नहीं है। उसके बाद हमें क्या करना है, एकांत में बैठकर अच्छी तरह से देखना है कि मैं आत्मा कहां कहां चिपकी हुई हूं, मेरा मन बुद्धि कहां कहां चिपका है, कहां कहां अटकती हूं। चलेंगे एक बहुत सुंदर सा अभ्यास करेंगे, अकेली आई, इसके लिए अभ्यास करना है, अकेली आई थी अकेले जाना है। बिल्कुल अकेलेपन की महसूसता तक पहुंचना है इस अभ्यास में। जैसी परम धाम से आई थी बिल्कुल वैसी अकेली वापस जाऊंगी। ध्यान देना भाई बहनों, हे आत्माओं, जैसे आए थे अकेले बिल्कुल वैसे ही और उतनी ही पवित्रता की अवस्था में जाना है। तो सोचो कितना एकांत चाहिए। बाबा की जीवनी पढ़ लीजिए उठाकर, एकांतवासी बनना। रोज की मुरली पढ़ लीजिए, कम से कम 8 घंटा योग में रहने का पुरुषार्थ जरूर करना है। चलेंगे अभ्यास करेंगे और सभी से अपने आप को डिटैच। ये जो जाले फंसे पड़े हैं, किसी के पतले किसी के मोटे हैं, किसी आत्मा के साथ मोटी रस्सियां किसी के साथ पतली रस्सियां हैं, इनको थोड़ी देर काटेंगे, अनुभूति करेंगे उपराम आत्मा की। लगना चाहिए हमको कि हाँ जाने की तैयारी हो रही है। चलेंगे मैं आत्मा इस सृष्टि रंगमंच पर अकेली ही आई थी, बिल्कुल अकेली, और मुझे जब वापिस जाना है अकेले ही वापिस जाना है, बिल्कुल अकेले। इसलिए अब मेरा तीसरा नेत्र खुला है, मैं संपूर्ण रूप से जाग गई हूं, मुझे भगवान की आवाज सुनाई दे रही है, वो मुझे बुला रहा है। अब मेरा वापिस जाने का वक्त आ गया है। मुझे वापिस जाना है, मुझे वापिस जाना है। ऐ मेरे मन, चल वापिस चलने की तैयारी कर। अब इस दुनिया से तेरा लंगर उठ गया है, देख भगवान तुझे ले जाने आया है। पुरानी दुनिया से मैं अपने हिसाब पूरे निपटा रही हूं, मैंने सभी को क्षमा कर दिया है। अब मुझे केवल एक बाप को ही याद करना है। आज की वाणी में बाबा ने कहा, याद करेंगे तो दूर रहते भी जैसे पास हो। भले ही मैं आत्मा इस नाटक में फंसी हूं, अगर दिल से मैं बाबा को याद करती हूं तो बाबा बिल्कुल मेरे आसपास महसूस होता है। अब मुझे केवल एक बाबा को प्यार करना है, मुझ आत्मा को केवल बाबा ही मुक्त कर सकते हैं। हमारे प्यारे ब्रह्मा बाबा ने 51 वर्ष पहले संपूर्णता की अवस्था पा ली और वो निरंतर हमें अव्यक्त वतन में बुला रहे हैं। अब मेरा भी वापिस जाने का समय आ गया। आज से मैं हर आत्मा से अपने मन के सूक्ष्म तार काटती हूं। अब मुझे वापिस घर जाना है, वापिस घर जाना है, वापिस घर जाना है। धुन लगा लें वापिस जाने की, आपकी धुन की आवाज भगवान को सुन जानी चाहिए। बैठें थोड़ी देर इस अवस्था में। अब घर जाना है। हे प्रभु प्रिय आत्मन, अगर मन बुद्धि की लाइन क्लियर नहीं है तो भगवान की मदद कैच नहीं कर पाएगी मन बुद्धि। इसलिए अपनी मन बुद्धि की लाइन बिल्कुल भगवान से क्लियर कर लो, बस मेरा बाबा, मीठा बाबा, एक बाबा के साथ ही मेरा प्यार है, एक बाबा ही मेरा रक्षक है, बाबा ही मेरे दिल में है, मैं बाबा की हूँ, बाबा मेरा साजन है, बाबा मेरा पिता है, बाबा ही मेरा सब कुछ है। जितना प्रेम का संबंध बाबा से जोड़ते जाएंगे, बाबा इस दुनिया से कर्म बंधन मुक्त होने में हमें मदद करता जाएगा। प्यारे भाई बहनों, बाबा कहते अब तुम्हारी वानप्रस्थ अवस्था है, अब बचपन के खेल छोड़ो। वानप्रस्थ अवस्था में बचपन के खेल नहीं, हलचल नहीं, चिंताएं नहीं। इसलिए अब हम बाबा के सूक्ष्म इशारों को समझते हुए और तीव्रता से हम बढ़ें आगे फरिश्ता बनने की ओर। आगे हम फरिश्ता की अवस्थाओं को चिंतन करेंगे कि फरिश्ता क्या है और किस तरह से और पुरुषार्थ हम उसमें करते चलें। एक कार्य सभी करेंगे, एक चार्ट लिखेंगे सभी, जो फरिश्ता बनने के, कर्मातीत बनने का पुरुषार्थ करना चाहते हैं, एक चार्ट लिखेंगे जिसमें अभी 3-4 पॉइंट से ही शुरू करेंगे, फिर उसके बाद हम उसको बढ़ाते चलेंगे। उस चार्ट में सबसे पहला पॉइंट होगा, आज एकांतवासी होकर चिंतन कितना किया। कर्मातीत अवस्था के बारे में एकांतवासी होकर चिंतन कितना किया, नंबर एक। नोट कर सकते हैं आप इसको। दूसरा है, क्या अब घर जाना है, ये धुन मुझे लग गई है। ये रोज चेक करना है, क्या आज ये धुन लगी रही, अब घर जाना है। जब तक ये याद नहीं रहेगा तब तक हमारा मन पैकिंग नहीं करेगा। जब रिजर्वेशन की डेट नजदीक आ जाती है तो अपने आप पैकिंग शुरू हो जाती है। मन को अब ये याद करा दें कि बस अब डेट नजदीक आ गई है, अब घर जाना है। तीसरा, अमृत वेले में, देखिए आज का स्लोगन याद कीजिए, आज का, आज की मुरली में स्लोगन आया है, परीक्षा के समय में प्रतिज्ञा याद आनी चाहिए। संपूर्ण बनने का रास्ता वही है, यानी जब परीक्षाएं आए, बातें आए, तो मैंने बाबा से क्या क्या प्रतिज्ञाएं की हैं, वो प्रतिज्ञाएं टूटनी नहीं चाहिए। क्रोध आना नहीं चाहिए, धैर्य भंग नहीं होना चाहिए, मन विचलित नहीं होना चाहिए, चिंताएं नहीं लग जानी चाहिए, हमको परेशानियां नहीं आ जानी चाहिए, क्योंकि हमने बाबा से वायदा किया है कि ये सब तेरा है, हमारा नहीं। तो अमृत वेला बाबा से प्रतिज्ञा की, ये चेक करना है। फिर आज किसी आत्मा से नेगेटिव हिसाब किताब तो नहीं बना लिया, ये चेक करना है। और पांचवा पॉइंट है, क्या मैंने आज सभी को पूरी तरह से माफ किया, यानी किसी के लिए थोड़ा सा भी व्यर्थ नेगेटिव नहीं चलना चाहिए। तो ये चार पांच पॉइंट नोट करेंगे। एकांतवासियों का चिंतन किया, क्या अब घर जाना है कि धुन लगी रही। और अमृत वेले बाबा से 4:30 बजे के बाद करवाते हैं रोज। दृढ़ प्रतिज्ञा की, किसी आत्माओं से साब किताब तो नहीं बनाया, क्या मैंने सभी को क्षमा किया। तो ये पॉइंट्स भी नोट करेंगे। और अंतर्मुखी, जो ये सुन रहे हैं इस विषय को, इसको सिर्फ सुनने तक नहीं रखना है। मैं ये पॉइंट बार बार रिपीट कर रहा हूं कि ये सिर्फ सुनने का विषय नहीं है, अब वैरागी बनने का समय है। वैरागी बन करके अब अपना बोरी बिस्तरा उठाइए, अब घर जाना है, बाबा ने कहा, अब घर जाने की तैयारी कीजिए, है ना। तो इसलिए मीठे भाई बहनों, अब हम चलते हैं परम धाम की ओर। अब समय हो गया है, तो इस तैयारी को करते रहेंगे तो बहुत जल्दी हम पुरुषार्थ में सफल हो पाएंगे। अच्छा जी, सभी को बात अच्छी तरह समझ में आई। अभी आपसे छुट्टी लेते हैं। बहुत अच्छा लगा, आपने बहुत धैर्य से सुनी ये बातें, बहुत कम लोग सुनते हैं गहरी बातों को, बहुत कम लोग सुनते हैं। आप सभी ने ध्यान से सुना तो हमें भी अच्छा लग रहा है कि जो रियल में तीव्र पुरुषार्थ करने वाली आत्माएं हैं, इसमें बड़े धैर्य से बैठ के सुनना बहुत जरूरी है। क्योंकि अधीरता संपूर्णता के मार्ग का गुण है ही नहीं है। जो धैर्य से नहीं सुनना चाहता है, वो समझिए फरिश्ता बनना ही नहीं चाहता है। अपने अंदर के भी हिसाब किताब बड़े धैर्य से ही क्लीन होंगे, तो इसलिए बड़े धैर्य से ही सुनना है। और आओ अभी फरिश्ता की ओर उड़ चले। इन्हीं शब्दों के साथ आज का सेशन हम पूरा करते हैं। कल फिर मिलेंगे, या तो इसी विषय के साथ या कोई और विषय लेकर के आपके बीच में आएंगे, लेकिन आप चार्ट अवश्य लिखिएगा। ओम शांति, ओम शांति। आपका दिन आम योग में भी आ जाइएगा, फिर कल सवेरे अमृत वेला में भी पहुंच जाइएगा। सभी इसी प्रकार से जितना एक दूसरे को सहयोग दे करके हम आगे बढ़ सके, उतना हम बढ़ते रहें। ओम शांति, थैंक यू।